ग्रंथ संता विलास में एक चक्कर है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, उसके वचन नंबर 80 पर आज विचार होगा। इस वचन को पहले ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। इस वास्ते निष्काम कर्म का साधन ही कल्याण का देने वाला है। सब कुछ ईश्वर का जानकर उसी के निमित्त सब कर्म करने और प्रेम भाव को धारण करके सिमरण करना ही कल्याणकारक है। इस भाव के ग्रहण करने से दुष्ट वासनाओं से जल्दी मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ वासनाओं द्वारा आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मानुष जिंदगी का परम साधन यह ही है। हमारी जो संसार में स्थिति है, सत्पुरुष सबसे पहले वो बता दें कि संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया, हमारी जो ये बाहरी दृष्टि है, यही कह के हमारी जो चर्म दृष्टि है, इससे तो हमको ऐसा लगता है कुछ लोग संसार में बड़ी मौज कर रहे हैं और मैं संसार में परेशान हो रहा। लेकिन ज्ञान की आंख जिसकी खुल गई है, वो जब ज्ञान दृष्टि से इसको देखता है तो वो निर्णय कर रहा है कि संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। शांति का मतलब है सेटिस्फेक्शन या संतोष या तृप्ति, को भी नाम दे लीजिए। तो मनुष्य कभी भी संसार में रहकर संसारी तरीके से जीकर तृप्त नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। संसार से जब विदा होता है तो वो असंतोष लेकर ही विदा होता है। अब बताइए, इतना कीमती मानव जन्म, मैंने केवल लोगों की नकल करके कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिए और जो मेरी कर्म करने की कैपेसिटी थी, जो कुछ सीखने की कैपेसिटी थी, उसका मैंने बेस्ट यूज भी कर लिया। लेकिन जब सारी जिंदगी की मंजिल तय हुई तब पता यही लगा कि असंतोष मन में वैसे का वैसा ही बना हुआ। असंतोष के आइटम बदल गए लेकिन असंतोष वैसे का वैसा ही बना हुआ। बल्कि यदि शरीर लोगी हो जाए या बूढ़ा हो जाए तब मनुष्य जानता है कि मेरी भोग करने की कैपेसिटी, कर्म करने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। इसलिए वो इतना निराश अंदर से होता है कि काश मेरा शरीर स्वस्थ होता तो मैं भी संसार में मौज करता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता। तो प्यास भी उसकी बस यही रहती है, इसके आगे कोई सोच नहीं होती। तो ज्ञान दृष्टि से ये निर्णय होते हैं कि मन के अंदर जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, देखा देखी करके या संसार करके, वो सारी की सारी इच्छाएं मनुष्य को बेचैन ही करती हैं, कर्म करने के बाद भी, कर्म ना करके भी। तो मेरे जीवन का रहस्य यहां खड़ा है। तो अब जब कुछ भी करके संसार में संतोष मुझको मिलना ही नहीं है, मेरे मन में असंतुष्ट ही रहना है, तब बताइए कि मुझको अपने कर्म करने का तरीका बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। बुद्धि का निर्णय भी कि संसार में एक दिन पुरुषार्थ करके मैं जरूर सुखी हो जाऊंगा, इस निर्णय को भी बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो सत्पुरुष जब निष्काम कर्म की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि कामना रखते चाहे तू कुछ भी संसार में क्यों ना कर ले, किसी की भी नकल तू क्यों ना कर ले, लेकिन तू कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये पूरे संसार की पूरी प्रकृति की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार की। हम क्या गलती कर जाते हैं, हम एक दूसरे से तुलना करके देखते हैं। मेरे पास मकान किराए का है, कोई अपने बनाए हुए मकान में रह रहा है, तो वो ये कष्ट देख रहा है क्या कि यदि मेरा अपना मकान होता तो मुझे किसी पर पराधीन नहीं होना पड़ता, जैसे चाहता मेरे मकान में रहता। क्योंकि जिसका अपना मकान है वो इस मकान के लिए नहीं रो रहा है, या रो रहा है तो अपने दूसरे के मकान को देख कर रो रहा है कि उसके पास बड़ा अच्छा स्पेस है, बड़ा अच्छा इसमें फैसिलिटी है रहने की, मेरे मकान में नहीं। तो कमी में तो हर व्यक्ति खड़ा हुआ है, हर आइटम में भी कमी खड़ी हुई है, लेकिन एक एक आइटम करके नहीं देखा जाता, पूरी जिंदगी को एक बार में एक साथ देखा जाता है। किसके मार्गदर्शन में, किसकी गाइडेंस में, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार जब हम सोचते हैं तब हमारी बुद्धि का वही निर्णय होता है जो सत्पुरुष निर्णय दे रहे हैं कि संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती, जीव संतुष्ट नहीं होता, असंतोष लेकर ही संसार से विदा हो जाता है और असंतोष लेकर ही सारा जीवन जीता। अब बताइए ये जन्म हमारा सफल हुआ या फेल हुआ। तो मनुष्य जन्म का रास्ता क्या था, वो कहते हैं कि इस वास्ते निष्काम कर्म का साधन ही कल्याण के देने वाला है। कल्याण का मतलब ये है वो हैप्पीनेस, वो आनंद, वो शांति जिसकी चाहना हर जीव के अंदर है, वो शांति उसको निष्काम कर्म के द्वारा मिल सकती है। अर्थात मन की वो गति जहां कामना खत्म हो जाती है संसारी, और इसी मन के अंदर क्या पैदा हो जाता है, इसी मन के अंदर ईश्वर की भक्ति पैदा हो जाती है, ईश्वर का रस पैदा हो जाता है, ईश्वर का प्रेम पैदा होता है। वो कोई प्रेम कहानी नहीं है, यदि कहानी होती तो मन के अंदर प्रेम कैसे पैदा हो। तो इस देह के अंदर वो सत्ता भी मौजूद है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, वो इस देह के अंदर मौजूद है। और मन जब उसको अनुभव करता है, उसके आनंद को अनुभव करता है, और उसके साथ साथ जब संसार के बंधन, संसार की चेतन इस मन की छूटती है, तब मन कितना शांत होता है, कितना उसको अच्छा लगता है। ये वही लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, वही लोग जान सकते हैं जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं। जैसे महाराज जी है, मान लिया गुरु का जीवन तो एक प्रमाण होता है जो हमारे सामने है, देखने में तो उनका शरीर हमारे जैसा ही है, और यदि बाहर की कंडीशन जिसको हम सुख करके देखते हैं, ये बड़ी अच्छी कंडीशन से रहने के लिए ये तो इंसान बड़ा सुखी होगा। तो महाराज जी कंडीशन बाहर की तो है, संसार की जो कंडीशन बहुत ही बिगड़ी हुई है, घर में भी वो नहीं रह रहे, कोई वस्तु भी उनके पास नहीं, अधिकतर समय उनका जंगलों में बीता है, एकांत में बीता है। लेकिन मन की हालत क्या है कि मन अंदर से बाहर आना ही नहीं चाहता, समाधि में भी इतना आनंद है कि मन के अंदर संसार का एक भी संकल्प उठ ही नहीं रहा है। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाए उस चीज में जो वो देह के अंदर अनुभव कर रहा है। वो ऐसा आनंद है, ऐसी शांति है जिसके खोने का भी कोई खतरा नहीं, वो परमानेंट शांति इस देह के अंदर मौजूद। तो आप बताइए कि गुरु का जीवन, गुरु की स्थिति ये सिद्ध कर रही है कि जो कुछ भी शास्त्र में लिखा हुआ है, जो कुछ भी सत्पुरुषों ने कहा है करने के लिए, जो हमारे जीने का एक तरीका बताया उन्होंने, उसके लिए मार्गदर्शन किया, वो सब कुछ सत्य है, वो सब कुछ ठीक है। यदि वो ठीक नहीं होता, यदि वो सत्य नहीं होता, तो आज तक सारे संसार में आज भी लोगों को जो अच्छे व्यक्ति लगते हैं वो आपको देखते होंगे कि ज्यादातर वही लोग होते हैं जो आध्यात्मिक, जो ईश्वर मार्ग पर गंभीरता से चलने वाले हैं। और दूसरी व्यवहारिक बात क्या होती है, उनके अंदर निष्कामता होती है, उनके कर्म में परोपकार होता है, उनके व्यवहार में प्रेम होता है, दूसरे के कल्याण की, दूसरे के भले की भावना होती है। मैं चाहता यही हूं, ऐसा ही समाज चाहता हूं, ऐसा ही परिवार चाहता हूं, लेकिन मेरा कर्म इसके विरुद्ध है, मेरे जीवन का लक्ष्य इसके विरुद्ध है, मेरी जो बुद्धि है वो इसके विरुद्ध, मेरी बुद्धि के निर्णय नहीं बदलते, मैं वही नकल करता रहता हूं जो सारे संसारी कर रहे हैं, मैं भी उसी में लक्ष्य बना लेता हूं और जिंदगी मेरी कहां खत्म हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसलिए यदि मैं विचार करने को तैयार नहीं हूं, गंभीरता से विचार करने को तैयार नहीं हूं, कम से कम अपने बारे में तो मुझे गंभीर होना ही चाहिए, दूसरे पे तो मेरा बस नहीं चलता, क्योंकि अपने ऊपर तो पूरा बस चलता है मेरा। तो मैंने गुरु धारण करना होता है, गुरु धारण करने का मतलब होता है वो जो चीज उसने प्राप्त की, जिसके कारण जो लोग उनके नजदीक आए उनको ठंडक मिली, संसार की बेचैनी उनके अंदर कम हुई है, उस गुरु को, उस संत को या उस सत्पुरुष को जिसने भी उसको अपने जीवन का आधार बनाया, उसको उसके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आई है, एक शांति आई है, एक जीवन की सफलता का आनंद आया है। उसके बुद्धि कह रही है कि तेरा जीवन सफल हुआ, तूने संसार में रहकर संसारियों की नकल करके बिगड़ा जीवन व्यतीत नहीं किया, तूने गुरु के मार्गदर्शन अनुसार, शास्त्र के मार्गदर्शन अनुसार वैसा जीवन व्यतीत किया है जिसके लिए वो मार्गदर्शन हमारे लिए कर रहे थे। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिला था, निष्काम होने के लिए, क्योंकि जब मन में कामना होती है तो मन बाहर की तरफ भागता है, बाहर क्या है, इंद्रिया है, शरीर है और संसार है, और हमको पता है ये सब कुछ नाशवान है, सब कुछ परिवर्तनशील है, यहां कब क्या घट जाएगा मुझे पता ही नहीं, पत्नी बड़ी अच्छी है, पति बड़ा अच्छा है, दोनों में बड़ा प्रेम है, बड़ा सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी रात ऐसी होगी, कौन सा दिन ऐसा होगा कि दोनों को मिलने की आखिरी दिन होगा, पता ही नहीं, उम्र अभी 30 साल की है, किसी की 25 की है, किसी की 40 की है, अकेला रह गया। तो हर चीज इतनी क्षण मंगुर है, हर चीज ऐसी नाशवान है, ऐसी परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए सतपुरुष बार बार वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा, जीवन के द्वारा हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि तू संसार में चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, तुझे कभी भी संतोष प्राप्त हो ही नहीं सकता, ये पूरी प्रकृति का निजाम है, मैनेजमेंट है। यही वो कह रहे हैं कि संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। तो अब बताइए, संसार में कितना भी पुरुषार्थ कर लीजिए, आपको कभी भी संतोष नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी भी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूं, मेरी बुद्धि का ये निर्णय हो ही नहीं पाता, इसीलिए बार बार सत्संग सुनने की जरूरत होती है, बार बार सत्पुरुषों के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत होती है, उन पर विचार करने की जरूरत होती है, ताकि मेरा भी, मेरी बुद्धि का जो सांसारिक निर्णय है वो निर्णय बदले और मेरी बुद्धि का भी वही निर्णय हो जाए जो सत्पुरुष का निर्णय है, जो गुरु का निर्णय है। तो मेरे जीवन में जैसे कि पैसा कमाने के लिए सारा वक्त है मेरे पास, इतना पैसा कमाने की कोशिश करता हूं कि वो वक्त भी मेरा कम पड़ जाता है। मेरी इच्छा होती है कि 24 घंटे की जगह 48 घंटे का दिन होता तो मैं कितना कमा सकता था, कितना सुख भोग सकता था, मेरी ये कल्पना होती है। और सत्पुरुष क्या करें कि प्रेमी संसार में आए हो तो पैसा कमाने नहीं आए, संसार में वास्तव में तो धर्म कमाने आए हैं। धर्म का मतलब ही होता है उस चीज को धारण करना अपने इस शारीरिक जीवन में, जिस चीज को धारण करके मन के अंदर संतोष आता है, बुद्धि के अंदर ये बात आती है कि वास्तव में मेरा जीवन सफल हो रहा है जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, वो सतमार्ग का निर्णय है, ईश्वर मार्ग का निर्णय है, वो धर्म मार्ग का निर्णय है। इसीलिए ये त्याग का रास्ता है मनुष्य जन्म का, मैंने अपनी धीरे धीरे वासनाओं को खत्म करना है। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ रही थी, संसारी दृष्टि से देखो तो मेरी वासनाओं का विकास हो रहा है। जबकि मेरे जीवन के बारे में रहस्य क्या था कि जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती है, मैंने अपनी वासनाओं का सिंप्लीफिकेशन करना था, उसका उसको धीरे धीरे कम करना था। इतनी कम हो जाती कि मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं शरीर की है वो पूरी हो जाती, बाकी मैं निष्काम होने के लिए जीवन व्यतीत करता, प्रभु भक्ति करने के लिए मैं जीवन व्यतीत करता। लेकिन मेरा ये ना ये सोच ऐसी है, ना मेरे जीवन का चलन ऐसा, इसकी जरूरत ही नहीं समझता, बल्कि बहाने तलाश करता हूँ क्या करूं। इतने काम है, मुझको तो एक घंटा भी ईश्वर की याद करने की फुर्सत मिलती ही नहीं। मैं फिर भी ये तलाश नहीं करता मैं कहां गलती कर रहा हूं, कहां आज तक गलती करता रहा, तभी मैं नहीं सोचता। मैं अपने जीवन की सफलता उस काम की पूर्ति में ही समझता हूं, उस मार्ग में नहीं समझता जिसकी बात सत्पुरुष कर रहे हैं। तो वो तो साफ कर रहे हैं कि इस वास्ते निष्काम कर्म का साधन ही कल्याण का देने वाला है। चाहे तेरे हजार जन्म हो जाएं इसी प्रकार के, लेकिन रास्ता तेरा शांति का एक ही है कि निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का मतलब होता है कि वो वे ऑफ लाइफ जिसमें तेरी कामना दिन प्रतिदिन वर्ष हर वर्ष कम होती है, कम से कम में तेरा गुजारा चलता रहे। अब बताइए तेरी इंद्रिय भोगों के जो शौक है वो कभी तुझको इस मार्ग पर चलने देंगे? कभी नहीं चलने देंगे, क्योंकि शौक जो है उसमें इतनी वैरायटी है और संसार में हर वर्ष इतनी चेंजेस आ जाती हैं। किसी भी आइटम को देख लीजिए, मान लिया है एक हमने पैंट पहनी है, पजामा पहनना है या सलवार पहनी है। आप मैं तो बचपन से देख रहा हूं आज तक, धीरे धीरे उसके नीचे का जो मोरी है वो चौड़ी होती जाती, फिर एक लिमिट आ जाती है, फिर छोटी होती चली जाती। पूरा जन्म मुझे देखते हो गया कि नीचे से चौड़ी होती वो फैशन आ गया, फिर छोटी होती रहती। तो मैं चैन से कभी जी ही नहीं पाता। हर मामले में यही होता है, उसकी वैरायटी बदलती रहती है और मैं उस वैरायटी में, उस चेंज में मैं फंसा रहता हूं। इसीलिए जिसने फैशन को अपने जीवन की जरूरत बना दिया वो हमेशा ही परेशान रहता है, हमेशा ही उसमें बेचैन रहता है। हर मामले में, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, चाहे मकान बनाने की चीज हो, हर प्रकार का आप संसार का जो कर्म है, संसार का जो चलन है देख लीजिए, वहां लगातार चेंज चाहिए। इस चेंज में ही मैं सेटिस्फेक्शन की तलाश करता हूं। तो बताइए कि मेरी बुद्धि की जो स्थिति है, मेरी बुद्धि का जो निर्णय है वो कितना गलत है। कभी ये सोच ही नहीं आ रही है, ये चेंज तो हमेशा ही चलती रहेगी, तो मैं कभी सेटिस्फाई हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो सत्पुरुष कहते हैं कि प्रेमी स्थायी वस्तु तो केवल एक है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जिसके आधार पर यह तेरा शरीर चल रहा है, जिसके आधार पर सारी यह प्रकृति चल रही है। वो नारायण, वो प्रभु उस देह के अंदर मौजूद है, लेकिन तेरी जो मन की ट्रेनिंग है वो इस चेंज के लिए है, इस वैरायटी में। इसीलिए मन तेरा हमेशा परेशान रहेगा, मन के कारण तू हमेशा परेशान रहेगा। जो शांति का सागर ईश्वर है वो उससे हमेशा दूर रहेगा। इसलिए माली करें प्रेमी, सब कुछ ईश्वर का जानकर उसी के निमित्त सब कर्म करने और प्रेम भाव को धारण करके सिमरण करना ही कल्याण कारक है। सब कुछ ईश्वर का जानकर उसी के निमित्त सब कर्म करने और प्रेम भाव को धारण करके सिमरण करना ही कल्याण कारक है। इससे क्या होगा, इस भाव के ग्रहण करने से दुष्ट वासनाओं से जल्दी मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ वासनाओं द्वारा आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मानुष जिंदगी का परम साधन यह ही है। सब कर्म जब ईश्वर के लिए करने, इसका मतलब क्या है? जब मेरे जीवन का लक्ष्य यह बन जाता है कि मैंने अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करना है या उसके दर्शन करने हैं या उससे अंदर भेंट मेरी होनी है, जब लक्ष्य तेरे जीवन का ये बनता है तो माँ जी कह रहे प्रेमी तब तू इस भाव को अपनाता है कि सब कर्म ईश्वर के अर्पण क्यों करने पड़ते हैं। सब कर्म कैसे अर्पण होते हैं आप जानते हो कि देह जब संसार में आती है तो ये प्रारब्ध लेकर आती है। सारा बाहर का घटनाक्रम उस देह के लिए जो घटेगा वो प्रारब्ध डिसाइड करता है। तुम्हें कहाँ रहना है क्या करना है सब कुछ प्रारब्ध डिसाइड करता है। तो शारीरिक जीवन जो कर्म करके है वो तो प्रारब्ध डिसाइड कर रहा है, लेकिन उस किसमें तो जीवन की सफलता देख रहा है ये प्रारंभ से नहीं कर रहा, इसके लिए तू स्वतंत्र है। इसीलिए शास प्रभु जब अवतार लेते हैं तो शास की रचना करके जाते हैं, प्रैक्टिकल जीवन आपको दिखा कर जाते हैं कि कैसे तुम्हें संसार में मनुष्य मानव जन्म लेकर निष्काम होना है। तू कामनाओं का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, कामना को मल्टीप्लाई कर रहा है, एक इच्छा पूरी करता है दूसरी खड़ी कर लेता है, दूसरी पूरी करता है तीसरी खड़ी कर लेता है। ये इच्छाएं तेरी जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये इच्छाएं भी बढ़ती रहती है, इनका विकास होता रहता है। तो तूने रास्ता कौन सा सीखा, कैसे संसार में रहकर ज्यादा बेचैन हुआ जा सकता है, मैंने वो रास्ता सीख लिया क्योंकि इसकी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है, मैं करके रहा हूं। तो इसीलिए जब वो कह रहे हैं इस भाव को ग्रहण करने से दुष्ट वासनाओं से जल्दी मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ वासनाओं द्वारा आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो दुष्ट वासनाएं कौन सी है और श्रेष्ठ वासनाएं कौन सी है, ये संसारिक जो हम चक्र जिसमें फंसे हुए हैं ये सारी सारी दुष्ट वासनाएं, और श्रेष्ठ वासनाएं कौन सी है, महाजी जो ये निष्काम होने का मार्ग बता रहे हैं सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्संग्रहण, मेरे बुद्धि के निर्णय इसके अनुसार हो जाते हैं। वे ऑफ लाइफ मेरी ये हो जाती है इस 5 पॉइंट प्रोग्राम पर मैं चलता हूं, संसार नहीं छोड़ता, संसार की चेतन संसार की बेचैनी मेरी हर वर्ष कम होती रहती है और अंदर एक प्रभु का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हर वर्ष मेरे अंदर निष्कामता बढ़ती है, हर वर्ष मेरे अंदर जो है सादगी बढ़ती है, हर वर्ष मेरे अंदर उपकार बढ़ता है दूसरों का परोपकार, और मैं असत्य छोड़कर सत्य पर डटा रहता हूं। प्रभु जितना भाग में है उतना तो देगा ही, मैं क्यों बेईमानी करूं, मैं क्यों मक्कारी करूं। तो वो उसको ईश्वर दिखाई पड़ता है, हर मामले में ईश्वर का सिद्धांत दिखाई पड़ता है, कारणकर्ता प्रभु को ही वो जानता है। इसलिए सारे कर्म सारे जीवन का प्रोग्राम वो ईश्वर के लिए बनाता है, ईश्वर के लिए वो जीता है। तो सारे कर्म कैसे अर्पण करोगे प्रभु के आगे, यही जो प्रोग्राम दे रहे हैं सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, इस पर जब संत विलास में 5 चैप्टर तुम पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे और गहराई से पढ़ोगे इसको मैं लाइफ में अडॉप्ट कैसे करूं, कैसे इसको जीवन में धारण करूं, तो ये 5 पॉइंट का जो प्रोग्राम है ये वही व्यक्ति बनाएगा जिसकी बुद्धि में ये आ जाएगा कि मैंने अंतर्यामी ईश्वर को जो शांति का सागर है जिसमें पूर्ण संतोष है, जो उसने भी ईश्वर की खोज की वो पूर्ण संतुष्ट हो गया, मैंने उस संतोष की तरफ बढ़ना है, अंतर्यामी ईश्वर की ओर बढ़ना है, इसीलिए जगत में मैंने निष्काम होना है, कामनाएं बढ़ानी नहीं है, कामनाएं धीरे धीरे मैंने कम करनी है अपनी, ताकि मैं बिल्कुल ही सादा हो जाऊं। सादा का मतलब यह है कि मेरे मन को बाहर की सोचने की जरूरत ही ना पड़े, मेरे मन में एक ही इच्छा हो कि कब चैन से बैठूं, अंतर्यामी प्रभु की याद करूं, उसका आनंद में लूटूं, उसका जो संतोष है उसकी जो शांति है वो मुझको प्राप्त हो। तो आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, मन प्रेम से अंतर्यामी ईश्वर की याद करता है, मन बेचैनी लेकर संसार के आइटम्स की याद नहीं करता। संसार की आइटम्स जब याद करते हैं आप, याद रखिए, आप देख लीजिए कभी भी देख लीजिए कि आपका मन बेचैन होता है, और जिस दिन भी आप प्रेम से प्रभु की याद कर लेते हो आपके मन के अंदर एक चैन आता है, करके देख लीजिए। तो जिसका जीवन गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अंदर की ओर जाने के लिए होता है, जो ये प्रोग्राम जो है माँ जी का 5 पंचप्रोग्राम सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सुन, इसका विवेचन आप खुद करके देख लीजिए, संतल वास पढ़कर देख लीजिए, ये सारा प्रोग्राम का एक ही लक्ष्य है कि मन किसी किस तरह अंदर जाए और बुद्धि में किस तरह ईश्वर का निश्चय पक्का हो। तो ये मन और बुद्धि दोनों अंतर्यामी ईश्वर की खोज करते हैं, संसार के सुखों की खोज नहीं करते, संसार में केवल गुजरान वाला प्रोग्राम व्यतीत करते हैं, गुजारा करते हैं, शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, बाकी वो जानते हैं। जो घटनाक्रम सुख का हो चाहे वो दुख का हो, जो घटना है वो घट के रहेगा, मैं उसमें लेश मात्र भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि केवल मेरा ही जीवन प्राप्त अधीन नहीं है, मेरे चारों तरफ जो ये प्राकृतिक चक्र है ये पूरा का पूरा उस प्रारब्ध के अधीन ही है। इसमें विधि का विधान चलता है, लोगों का विधान नहीं चलता, क्योंकि बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रभु का कोई विधान नजर ही नहीं आता, सब लोगों का विधान ही चलता हुआ नजर आता है। इसलिए हम घबरा जाते हैं कि कोई कुछ ऐसा ना कर दे कि जिससे मुझे नुकसान हो जाए। तेरा नुकसान कोई कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तेरा जीवन प्रभु ने प्रारब्धाधीन कर दिया है, और वो प्रारब्ध तेरे जो पूर्व जन्म के पास्ट जो कर्म है, तेरे पाप रूप कर्म और पुण्य रूप कर्म, उसके कारण जो सुख और दुख का जो बैलेंस शीट तुझको मिली है, उसके अनुसार तेरे इस जन्म में सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, लेकिन शांति, शांति के लिए मनुष्य जन्म मिला था, इसके लिए पुरुषार्थ करने, तो ये निष्काम धर्म का रास्ता उस पुरुषार्थ के लिए है, जिस पुरुषार्थ को करके मुझे अंतर्यामी ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है और ये मेरा जीवन सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम।